8 अगस्त दिन बुधवार दिन भर मैं हूँ रेहान फदल। डीएमके नेता करुणानिधि को अंतिम विदाई, मरीना बीच में दफनाया गया।
वो मरने के बाद हम लोग पर्सन से इधर आया था, उसको देख के बाद इधर आके वो उसका ये करेगा ना बरी, वो जगह में बैठ के हम लोग बाहर बैठा है।
दुनिया जहान में नजर दौड़ाएंगे वेनेजुएला में हो रही राजनीतिक हलचल पर।
वेनेजुएला के पास वेल्थ बहुत है और उसकी वजह से चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिकन तेल की कंपनियां हो, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि वहाँ तेल और इस तरह के जो प्राकृतिक साधन है वो सरकार के कब्जे में रहे, उनका राष्ट्रीयकरण।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के पार्थिव शरीर को अभी कुछ देर पहले राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई के मरीना बीच पर दफना दिया गया है। उनकी अंतिम यात्रा में शोक मनाते हुए हजारों लोग शामिल हुए। इससे पहले दिन में दर्शन के लिए चेन्नई के राजाजी हॉल में उनका पार्थिव शरीर रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय नेताओं ने उन्हें वहां जाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही राजाजी हॉल के बाहर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हुई भगदड़ में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई और 33 से अधिक लोग घायल हुए। अमेरिका द्वारा ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद तुर्की ने कहा है कि वो ईरान से प्राकृतिक गैस खरीदता रहेगा। तुर्की के ऊर्जा मंत्री फतेह दोनमेंच ने कहा कि अंकारा अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद गैस खरीदता रहेगा और अमरीका के साथ सुनियोजित बातचीत इस मुद्दे का हल निकालने में मदद कर सकती है। गौरतलब है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान से जो भी व्यापार करेगा फिर वो अमरीका के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा है कि अमरीका उनके देश को तेल निर्यात करने से रोकने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा अमरीका अब विश्वसनीय नहीं रहा है। हम कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वे किसी भी समझौते के लिए प्रतिबद्ध होंगे? अमरीका के तरीके और व्यवहार ईरान क्या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भरोसेमंद नहीं रहे हैं? ये थे ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के शब्द। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार से आग्रह किया है कि बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षित वापस लाने के लिए वो रखाइन प्रांत की स्थिति सुधारें। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि म्यांमार सरकार ने कुछ उत्साहजनक कदम उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि रखाइन प्रांत में आसानी से आया जा सके, सभी समुदायों को आवागमन की स्वतंत्रता हो और बुनियादी समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। रिपोर्टों में कहा गया है कि म्यांमार और संयुक्त राष्ट्र के बीच जून में हस्ताक्षर किए गए एक समझौते के तहत रोहिंग्या के वापस लौटने पर नागरिकता की गारंटी नहीं दी जाएगी। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंडोनेशिया अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को आए भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या कम से कम 150 हो गई है और जीवित लोगों की खोजबीन जारी है। लोम्बोक द्वीप पर भूकंप के कारण सड़कें और पुल तबाह हो चुके हैं, जिससे उत्तर और पूर्व के पर्वतीय इलाकों में पहुंच पाना कठिन हो रहा है। राष्ट्रीय आपदा राहत एजेंसी के प्रवक्ता सुतोपो पुर्वो नुग्रोहो ने कहा कि अगर कोई जीवित पाया गया तो उसे निकालने के लिए अधिक सावधानी की जरूरत होगी। किसी जीवित को ढूंढते समय भारी मशीनों का अधिक देखभाल के साथ इस्तेमाल किया जाना है। हम कंक्रीट को किसी शख्स पर गिरने नहीं दे सकते। हमारे पास अभी ये बताने के लिए ना ही सही आंकड़ा है और ना ही फील्ड टीम की कितने लोग दबे हुए हैं। ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा राहत एजेंसी के प्रवक्ता सुतोपो पुर्वो नुग्रोहो के शब्द। सऊदी अरब ने कनाडा में अपने सभी चिकित्सा उपचार कार्यक्रमों को रोक दिया है और वहां के अस्पतालों से सऊदी मरीजों को निकालने के लिए इंतजाम कर रहा है। दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव के बाद यह नया कदम उठाया गया है। सऊदी का आरोप है कि कनाडा उसके अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। पिछले सप्ताह कनाडा ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जताई थी, जिनमें अधिकतर महिलाएं थीं और इन्हें जल्द रिहा करने को कहा गया था। इसके जवाब में सऊदी ने कनाडा के राजदूत को निकाल दिया था और अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। डीएमके नेता करुणा निधि को अब से थोड़ी देर पहले चेन्नई के मरीना बीच में राजकीय सम्मान के साथ दफना दिया गया। उनके ताबूत पर लिखा था, एक शख्स जो बिना आराम किए काम करता रहा, अब वो आराम कर रहा है। इस मौके पर चेन्नई के सभी स्कूल, कॉलेज, दुकानें, पेट्रोल पंप आदि बंद रखे गए थे। सिनेमा हॉल्स ने भी बुधवार के सारे शो रद्द कर दिए थे। इस मौके पर करुणानिधि को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश के कई चोटी के नेता मौजूद थे। आइए चलते हैं चेन्नई बीबीसी संवाददाता विनीत खरे के पास। विनीत, आज दिन भर कैसा माहौल रहा चेन्नई में करुणानिधि के अंतिम संस्कार के दौरान?
रिहान, मैं कल रात से यहाँ पर हूँ। कल हम देर रात पहुंचे थे चेन्नई, तो मैं काफी देर तक एम करुणानिधि के घर के बाहर था, तो लोग आ जा रहे थे। जो एक्सेसिबिलिटी की बात होती है कि करुणानिधि ऐसे नेता थे कि जिनसे आम आदमी मिल सकते थे, तो उनके घर के दरवाजे खुले हुए थे, लोग अंदर तक जाकर उनकी जो तस्वीरें लगी हुई हैं वो देख रहे थे। सुबह से जहां पर उनकी उनका पार्थिव शरीर रखा था वहां लोगों का तांता बंधा हुआ था। चाहे वो AIDMK से लोगों का जुड़ाव हो, कांग्रेस से जुड़ाव हो, हर पॉलिटिकल एफिलिएशन से जुड़े हुए लोग सड़कों पर थे। कई लोगों ने अपना जो शोक दिखाने के लिए काले कपड़े पहन रखे थे, कई लोग रो रहे थे, लोगों के हाथों में झंडे थे। यहाँ पे दुकानें बंद हैं, सड़कों से टैक्सियां नदारद हैं, ऑटो आपको नहीं मिलेंगे। मरीना बीच के बाहर जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, मेरी एक स्थानीय है, उनसे मुलाकात हुई, तो उनका कहना था,
आपने काले कपड़े पहने हुए हैं, करुणानिधि की मौत कितना बड़ा या क्या मायने रखता है आपके लिए?
करुणानिधि जो बहुत 80 साल का पुराना आदमी है पॉलिटिक्स का, इसके लिए हम लोग बहुत परेशान है। कल से वो मरने के बाद हम लोग परेशान से इधर आया था, उसको देख के बाद इधर आके वो उसका ये करेगा ना बरी, वो जगह में बैठ के हम लोग बाहर बैठा है।
कितना बड़ा झटका है तमिलनाडु के लिए उनका जाना?
वो बहुत बड़ा सर, वो सब काम किया था हम लोग का, इधर ये गुड़से माटरवारियम उसका घर बना के दिया, ब्रिजेस डाला था, बहुत ये स्टूडेंट के लिए किया, कामराज जी का वो फूड का बाद में अंडा दिया था एक एक टाइम का, वो सब कुछ किया था।
लेकिन उनकी कई दिनों से हालत खराब चल रही थी, अब आगे क्या होगा डीएमके का?
डीएमके कुछ नहीं होगा सर, वो बहुत पुराना पॉलिटिक्स है, स्टालिन है, कुछ फिक्र मत करने का।
जी, तो ये देख सानी, जो डीएमके समर्थक जो कि उम्मीद जता रहे थे कि पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। रिहान,
उनको मरीना बीच पर दफनाने के बारे में कुछ विवाद था, उसको चुनौती दी गई थी अदालत में?
देखिए, डीएम करुणानिधि खुद चाहते थे कि उन्हें वही मरीना बीच में दफनाया जाए। उनके जो पॉलिटिकल गुरु हैं या फिर पहले जो डीएमके नेता रहे हैं द्रविड़ आंदोलन से, वो भी जयललिता हो, उन्हें भी वहीं दफनाया गया, तो वो चाहते थे वहां दफनाया जाए। लेकिन AIADMK की तरफ से इसका विरोध हुआ, तो मेरी कुछ स्थानीय जो समर्थक हैं डीएमके की, उन्होंने बोला कि ये ओछी राजनीति है, तो इस तरह से। लेकिन फाइनली जो मद्रास हाईकोर्ट ने है उसने फैसला दिया कि जो तर्क रखे गए थे AIDMK की सरकार की तरफ से वो नाकाफी थे, तो फाइनली जो है उन्हें मरीना बीच में ही दफनाया गया। एक और मैं आपको आवाज सुनाना चाहूंगा, मेरी स्थानीय एक वही मरीना बीच के बाहर व्यक्ति थे, उनसे बात हुई तो उनका कहना था,
How big a loss is Karunanidhi's death?
He's a great man. Every Tamilians are feeling very sad. They're from the night itself, even children are asking what happened. Last 10 days where we are in suffering of Kalanjar admitted in hospital, Kaveri. Last, we have lost the big politicians, one of the grandfather. We can also, in our family member also, whatever it is, gives a great loss for all Tamilians.
तो जैसा कि रेहान, बस उसको इनको मैं समअप करूंगा, उन्होंने तो कई लोग जिन्हें अपना अपने पिता की तरफ की तरह देखते थे, अपने दादा, अपने ग्रैंडफादर, परिवार के सदस्य की तरफ तरह देखते थे, जो कि ये व्यक्ति बता रहे थे।
बहुत बहुत धन्यवाद विनीत खरे आपका चेन्नई से। मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार मामले में बिहार सरकार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने आज दोपहर इस्तीफा दे दिया। दूसरी ओर इस मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर के चेहरे पर आज अदालत परिसर में स्याही फेंकी गई। लगातार चर्चा में बने हुए इस मामले में आज दिनभर क्या हुआ, सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की इस रिपोर्ट में।
बीते महीने मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार मामले में गिरफ्तार एक सरकारी अधिकारी की पत्नी ने आरोप लगाते हुए पूछा था कि मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा बालिका गृह में अपने साथ जाने वाले अधिकारियों को बाहर छोड़कर उसके भीतर क्या करने जाते थे। इस आरोप के बाद विपक्ष लगातार मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इससे इनकार करते हुए मंत्री और उनकी पार्टी जदयू बार बार यह पूछ रही थी कि विपक्ष के पास सबूत क्या है। इधर कल शाम से ही ये खबरें आने लगी कि मंजू वर्मा के पति मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार मामले के मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर से लगातार संपर्क में थे और उनके बीच बातचीत होती थी। आज पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के लिए गए ब्रजेश ठाकुर ने भी मीडिया के सवालों के जवाब में माना कि यह बातचीत होती थी।
और डिटेल्स आया है मंजू वर्मा के पति से आपकी बात हुई है 35 बार पिछले 3 महीने के अंदर, क्या यह मामला हुआ?
नहीं, किसी बिंदु पर बात हुई है, पॉलिटिकल इशू पर बात हुई है, किसी कार्यवश बात कभी नहीं हुई आज तक उससे, कोई ऐसा परिचय भी मेरा नहीं है उससे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जनवरी से मई के बीच चंद्रशेखर वर्मा और ब्रजेश ठाकुर के बीच 17 बार बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट्स और ब्रजेश के बयान के बाद तेजी से बदले घटनाक्रम में आज दोपहर मंजू वर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे की पुष्टि करते हुए जदयू प्रवक्ता संजय कुमार ने कहा,
ये कहीं न कहीं कुछ पाया गया है, उसके लिए इस्तीफा देना पड़ा उनको। इस्तीफा दिया उन्होंने, अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। मेरे अपने इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री कहने से क्यों इस्तीफा देंगे?
मंजू वर्मा बिहार सरकार में एकमात्र महिला मंत्री थी। विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे को अपने संघर्ष की जीत बताया है। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
उधर देवरिया के बालिका संरक्षण गृह में कथित यौन शोषण के मामले को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में CBI जांच की खुद मॉनिटरिंग की बात कही है। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये बात कही। वहीं अब राज्य के दूसरे जिलों के संरक्षण गृहों से भी अनियमितता की खबरें आ रही हैं। ताजा मामला हरदोई में पता चला है। पूरी जानकारी के साथ समीर आत्मज मिश्र।
देवरिया के संरक्षण गृह में चल रहे अवैध कार्यों की जांच के लिए एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने CBI जांच की सिफारिश का ऐलान किया, तो आज ये मामला हाईकोर्ट में भी पहुंच गया। हाईकोर्ट में इस मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DB भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने 13 अगस्त तक राज्य सरकार से सभी जानकारियां तलब की हैं। याचिकाकर्ता के वकील अरुण कुमार गोयल ने पत्रकारों को बताया,
इसके बारे में कोर्ट ने मंडे तक का टाइम दिया है कि मंडे को आप जवाब जो है दाखिल करें पूरी घटनाक्रम का, कि खास तौर पे कार के बारे में कहा है कि कुछ कारें आती थी ऐसी पेपर में छपा है और ये किसकी कारें हैं इसका आप पता लगाइए, मंडे तक इसको जवाब देने के लिए कहा।
अदालत ने ये सवाल भी किया है कि मामले में पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई और संस्था के ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद पुलिस वहां लड़कियों को क्यों भेजती थी। अदालत ने ADG को लापता लड़कियों का भी पता लगाने को कहा है। इस बीच लखनऊ से लगे हरदोई जिले में भी एक महिला संरक्षण गृह से महिलाओं के गायब होने का मामला सामने आया है। हरदोई के जिलाधिकारी पुलकित खरे का कहना था,
कल स्वाधार गृह का निरीक्षण करा गया था शासन के निर्देश के अनुसार। वहाँ पे जिस संस्था द्वारा ये स्वाधार गृह चलाया जा रहा है उसने 21 नाम पंजीकृत करे हुए थे। मौके पे सिर्फ 2 महिलाएं जो मानक अनुसार पात्र हैं वो मिली। जब और पूछताछ करी तो ये पता चला कि जो बाकी नाम है वो फर्जी चढ़ाए हुए थे अनुदान पाने की दृष्टिगत, और वो आसपास के गांव की ही महिलाएं थी जिनको निरीक्षण के समय वहां पे दिखा दिया जाता था जिससे अनुदान मिलता रहे संस्था को।
हालांकि संरक्षण गृह के संचालक आरती का कहना था कि जांच टीम जिस वक्त संस्था में आई तो महिलाएं मंदिर गई थीं।
21 महिलाएं थीं जबकि उसमें से 3 जा चुकी थीं, लेकिन सिर्फ गिनती देखते हैं बाकी कुछ नहीं देखते हैं, और बाकी की लेडीजें दर्शन के लिए मंदिर गई थीं। यहां पे 8 महिलाएं उनको उपस्थित मिली।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य भर में संरक्षण गृहों की जांच के बाद ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि अभी कई और संरक्षण गृहों में इस तरह की अनियमितता की खबरें सार्वजनिक हो सकती हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC देवरिया।
ये BBC है, आप दिनभर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। चीन में इन दिनों फिल्मों का बाजार चहक रहा है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि यहां सिनेमा घरों से होने वाली कमाई $8.5 अरब का आंकड़ा पार कर गई है। ऐसे बाजार में दंगल, हिंदी मीडियम, बाहुबली, पीके जैसी भारतीय फिल्में न सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों को टक्कर दे रही हैं, बल्कि पैसा बनाने के अलावा चीनियों का दिल भी जीत रही हैं। विनीत खरे की रिपोर्ट।
सलमान जी, वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। जय हो।
जय हो।
मैं चीन के आनहुई प्रांत के दूर के गांव में था, जहां खाने की टेबल पर 7 साल के बच्चे ने बताया कि उसने दंगल फिल्म देखी थी। सिर्फ बच्चे ने ही नहीं, खाने के टेबल के चारों ओर बैठे करीब करीब सभी लोगों ने बताया कि उन्हें फिल्म कितनी पसंद आई। दंगल, हिंदी मीडियम, थ्री इडियट्स, पीके, टॉयलेट जैसी फिल्मों ने चीन के शहरों गांव में बॉलीवुड और भारत की छवि के लिए जो काम किया है, शायद ही किसी डिप्लोमेसी से संभव हो।
मैं जादू हूँ या दाहू, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बोलूं।
शंघाई में मेरी मुलाकात आमिर खान फैन कैरन चेन से हुई, जिन्होंने पिछले साल दंगल देखी।
At that time I was very fat. About 98.
जब मैंने दंगल देखी तब मेरा वजन 98 किलो था। फिर मैंने दंगल में आमिर में हुआ बदलाव देखा और खुद से कहा, ये तो मैं भी कर सकती हूँ, और अब देखिए मैं कैसी बन गई हूँ।
भारतीय फिल्मों के फैन चियान पिन ली विदेशी फिल्में चीन लाने का काम करते हैं। ली के मुताबिक कॉलेज के जमाने में वो थ्री इडियट्स में साइलेंसर के किरदार जैसे थे, जो किताबों का रट्टा लगाया करता था। पूर्वी बीजिंग में अपने दफ्तर में बैठे चियान पिन ली ने बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनी हुई थी और लैपटॉप पे भारतीय फिल्मों के क्लिप्स और वीडियोस थे।
Right now, the real life, that movie reflects the real life of Indian people. That works very well in China.
भारतीय और चीनी समाज एक जैसा है। थ्री इडियट्स, हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में इमोशंस, प्यार, पारिवारिक रिश्तों की झलक मिलती है, जो चीन की फिल्मों से गायब है। चीन की फिल्मों में एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स और अजीब से प्लॉट होते हैं जो मुझे समझ नहीं आते, इसलिए मुझे भारतीय फिल्में ज्यादा पसंद हैं।
ये थे चियान पिन ली। लेकिन चीन में कई फैंस बॉलीवुड के अलावा साउथ इंडियन मूवीज के भी दीवाने हैं। मिलिए विवियन से, जिन्होंने फिल्म पीके के बाद बॉलीवुड 2 देखी। वो इतनी प्रभावित हुई कि फिल्म के पोस्टर्स और गुडीज उन्होंने जापान से मंगवाए।
I was quite shocked when I watched the Bahubali the conclusion.
जब मैंने बाहुबली पार्ट 2 देखी तो फिल्म की स्टोरी टेलिंग, गाने और डांस देखकर मैं दंग रह गई। फिल्म में डायरेक्टर एसएस राजमौली ने बहुत खूबसूरती से भारत की अनोखी सभ्यता को दिखाया है।
ये थी विवियन। चीन में विदेशी फिल्मों के लिए कोटा सिस्टम है, यानी एक निश्चित संख्या की ही विदेशी फिल्में यहां रिलीज हो सकती हैं। पिछले साल दंगल के मुकाबले इस साल जून तक 5 भारतीय फिल्में चीन में रिलीज हो चुकी हैं। चीन में बॉलीवुड फिल्मों की बढ़ती मांग पर चिंता यह भी है कि कहीं ज्यादा फिल्में बाजार खराब न कर दें। एलन ल्यू दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्में चीन में लेकर आए।
Price is high, it's reasonable, it's okay. But if you buy everything, trying to bring all the Indian movies to China, it's going to destroy their.
अगर आप सभी तरह की फिल्में चीन में लाएंगे तो इससे भारतीय फिल्मों की छवि खराब होगी। मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि ऐसा जर्मनी में हुआ था, जहां भारतीय फिल्में पहले अच्छा कारोबार कर रही थीं। वहां उन्होंने हर तरह की फिल्में मंगाई और मार्केट बर्बाद हो गया। मुझे चिंता है कि ऐसा कहीं चीन में ना हो जाए।
ये थे एलन ल्यू। भारतीय डायरेक्टर कबीर खान के साथ को प्रोडक्शन के अलावा एलन ल्यू चीन में आमिर खान की एक फिल्म का रीमेक भी बना रहे हैं। चीन में भारतीय फिल्मों के फैंस के लिए पिक्चर अभी शुरू हुई है। विनीत खरे, बीबीसी, बीजिंग, चीन।
लातिन अमरीकी देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो चर्चा में है। बीते शनिवार मादुरो ने आरोप लगाया कि विस्फोटक से लैस ड्रोन के जरिए उनकी जान लेने की कोशिश की गई। अमरीका और कोलंबिया ने उनके दावे पर सवाल उठाए हैं। सही तस्वीर क्या है, इस बार दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने यही पड़ताल की।
दुनिया जहान।
A la Venezuela consciente, vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica.
वेनेजुएला के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शनिवार 4 अगस्त को राजधानी कराकस में नेशनल गार्ड का 81वां सालाना समारोह चल रहा था। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भाषण दे रहे थे और नेशनल टेलीविजन पर इसका सीधा प्रसारण हो रहा था। शाम ठीक 5:41 पर भाषण रोककर राष्ट्रपति अचानक ऊपर देखने लगे। अंगरक्षकों से घिरे 6 फुट 3 इंच लंबे मादुरो के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। पास खड़ी उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। इसके बाद कैमरा मंच के सामने कतार में खड़े सैनिकों की ओर घूमा। वो भागते नजर आए और अचानक स्क्रीन काली हो गई। प्रसारण बंद हो गया। कुछ वक्त बाद वेनेजुएला के अधिकारियों ने ऐलान किया कि विस्फोटकों से लैस 2 ड्रोन के जरिए राष्ट्रपति की जान लेने की कोशिश की गई। जल्दी ही मादुरो भी सामने आए और विपक्ष के साथ पड़ोसी देश कोलंबिया को भी कटघरे में खड़ा कर दिया।
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana.
मेरी जान लेने की कोशिश की गई। मुझे शक नहीं है कि इस हमले के पीछे वेनेजुएला के अतिवादी हैं। उन्हें कोलंबिया से मदद मिली है। खुआन मैनुएल सांतोश इस कोशिश के पीछे हैं।
मादुरो ने उंगली अमेरिका पर भी उठाई। कोलंबिया ने आरोपों को खारिज करने में देर नहीं की तो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने शक की सुई को घुमाकर मादुरो की तरफ ही कर दिया।
There is no US government involvement in this at all. Within the past couple of hours I've spoken with our chargé and
अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है। कल शाम जो कुछ हुआ ऐसा लगता है कि इसकी रूपरेखा मादुरो सरकार ने ही तैयार की है।
मौके पर मौजूद रहे अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के बयान ने भी वेनेजुएला सरकार के दावों पर सवालिया निशान लगाए। 3 कर्मचारियों ने दावा किया कि धमाका एक अपार्टमेंट के गैस टैंक में हुआ। हालांकि मई में 6 साल के लिए दोबारा राष्ट्रपति चुने गए मादुरो के सहयोगियों के लिए ये वफादारी दिखाने का मौका बन गया। तख्ता पलट का लंबा इतिहास रखने वाले वेनेजुएला में रक्षा मंत्री व्लादिमीर लोपेज और दूसरे मंत्री बढ़ चढ़कर बयान देने लगे। होटलों पर छापे मारे गए, गाड़ियां जब्त हुई और गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन एक तस्वीर इन सब से अलग थी। आशंकित राष्ट्रपति, उनकी डरी हुई पत्नी और सत्ता का सबसे बड़ा संबल माने जाने वाले नेशनल गार्ड के भागते जवानों के मीम बने और लोग सोशल मीडिया पर उन्हें शेयर करते हुए मजा लेने लगे। विश्लेषकों ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट से जूझते देश की ये तस्वीरें सिर्फ सरकार के अस्थिर होने का संकेत नहीं देती बल्कि इससे विपक्ष और अतिवादियों की निराशा और दुस्साहस भी जाहिर होता है। वेनेजुएला में भारत के राजदूत रह चुके निरंजन देसाई को सुनिए।
वेनेजुएला की इकोनॉमिक पोजीशन बहुत गंभीर है तो कुछ होने वाला है लगता है, कब होगा वो तो बता नहीं सकते।
वेनेजुएला की आर्थिक बदहाली का शोर पूरी दुनिया में है। केंद्रीय बैंक ने साल 2015 से महंगाई दर के आंकड़े जारी नहीं किए हैं लेकिन जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री स्टीव हॉनके के मुताबिक अप्रैल में महंगाई दर 18,000% थी। साल 2008 के बाद से जीडीपी 41% से ज्यादा गिर चुकी है। साल के आखिर तक ये स्थिति और खराब हो सकती है। वेनेजुएला की मुद्रा बॉलीवर की गिरती साख को लेकर बीबीसी संवाददाता व्लादिमीर हेर्नांडेज ने कुछ अरसे पहले एक दिलचस्प तुलना की।
This cup of coffee in a way encapsulates the drama of the Venezuelan crisis. This is the equivalent of what I had to pay.
Venezuela के संकट को कॉफी के एक कप के जरिए समझा जा सकता है। 15 साल पहले जितनी कीमत में एक कमरे का एक फ्लैट मिलता था आज एक कप कॉफी मिलती है।
सबसे ज्यादा दिक्कत में वो तबका है जो गरीबी रेखा के नीचे है। आर्थिक संकट से परेशान हजारों लोग ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों का रुख कर चुके हैं। ये स्थिति उस देश की है जिसे प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद मिला है। पश्चिम में बर्फीले पहाड़, दक्षिण दिशा से लगे अमेजन के जंगल और उत्तर में समुद्री तट है। यहाँ तेल और गैस के साथ सोने का भंडार भी है। हाल में वेनेजुएला का दौरा करने वाले दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल नाफे की राय में प्राकृतिक संपन्नता भी कुछ हद तक वेनेजुएला की मुश्किल की वजह है।
वेनेजुएला की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये साउथ अमेरिका का देश है लेकिन ये पूरे कैरिबियन को झांक करके देखता है। सारे सी रूट को कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ से। पॉपुलेशन बहुत थोड़ी है और तेल इतना लोग कहते हैं सऊदी अरब से भी ज्यादा, अभी तो गोल्ड भी डिस्कवर हो गया। अभी लोग ये कहते हैं वहाँ नेचुरल गैस इतनी ज्यादा है कि ये सब देशों को सप्लाई करेगा। तो वेनेजुएला के पास वेल्थ बहुत है और उसकी वजह से चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो चाहे अमेरिकन तेल की कंपनियां हो, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि वहाँ तेल और इस तरह के जो प्राकृतिक साधन है वो सरकार के कब्जे में रहे, उनका राष्ट्रीयकरण हो।
आर्थिक विश्लेषकों की राय है कि दुनिया में तेल की कीमतें गिरने से वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। उसे 90% विदेशी मुद्रा तेल के निर्यात से ही मिलती है। मादुरो के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ह्यूगो चावेस की गरीबी हटाने और समानता लाने से जुड़ी सामाजिक योजनाओं ने भी देश की स्थिति खराब की। निरंजन देसाई बताते हैं कि चावेस के पहले देश के दो राजनीतिक दलों में ऐसा गठजोड़ था कि सत्ता में कोई रहे वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। चावेज ने इस गठजोड़ को तोड़ा,
मगर चावेज का प्रॉब्लम था कि ही वाज टू मच ऑफ अ सोशलिस्ट। इनकी एलीट है ना, वो ज्यादातर पैसे बनाते हैं मगर रहते हैं मायामी में। बोलते हैं मायामी इज द कैपिटल ऑफ लैटिन अमेरिका।
वेनेजुएला की राजनीति पर नजर रखने वाले अब्दुल नाफे को भी लगता है कि यूरोपीय नस्ल वाले लोगों को चावेज और मादुरो जैसे लोगों का उपहार रास नहीं आया है। हालांकि उन्हें विपक्ष के इस तर्क में भी दम दिखता है कि बदहाली के लिए सरकारी नीतियां भी जिम्मेदार हैं।
इलेक्शन था, इलेक्शन जीत गए, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली नहीं बन गई, नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुरू में ऐसा ख्याल था कि भी अमेरिका के प्रतिबंध बहुत तकलीफ दे रहे हैं, तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, वो बहुत ज्यादा गिर गई हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत अगर हुई है उसके लिए सरकार को भी कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी अब लेनी पड़ेगी।
लेकिन राष्ट्रपति मादुरो अमरीका और उसके सहयोगी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों को मुश्किल की वजह बताते हैं। बस ड्राइवर रहे मादुरो को आज भी ड्राइविंग सीट संभालना ही पसंद है। मई 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के बायकॉट और अमेरिका और लातिन अमेरिकी देशों की चेतावनी के बाद भी उन्होंने अपना रुख नहीं बदला। मादुरो की जीत के बाद अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए। ब्राजील, अर्जेंटीना और कनाडा जैसे 14 देशों ने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया।
ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको मादुरो को आइसोलेट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मादुरो जैसा आदमी फिर दोबारा से ये पूरे लैटिन अमेरिका का जो नेतृत्व है उसके दावेदार बनेंगे। चावेज ने दावेदारी की थी और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स में जो वोटिंग होती है 12-14 वोट हमेशा फिर अभी भी वेनेजुएला को मिल रहे हैं।
मादुरो की अगुवाई में वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया से भी रिश्ते लगातार खराब होते गए। निरंजन देसाई,
इनका रिलेशन कोलंबिया से अच्छा नहीं है। इनफैक्ट ये पहले ऐसा माना जाता था कि जो कोलंबिया में रेबल ऑर्गेनाइजेशन थी फार्क, उनको वेनेजुएला से सपोर्ट मिलता था।
अब मादुरो कोलंबिया पर वेनेजुएला के विरोधियों को समर्थन देने का आरोप लगाते हैं। तमाम मुश्किलों में घिरे होने के बाद भी मादुरो अपने राजनीतिक आदर्श चावेज के ही रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आलोचक उन्हें करिश्माई चावेज के आसपास भी नहीं देखते और उन्हें चावेज की भद्दी नकल बताते हैं। विपक्ष उन्हें दमनकारी तानाशाह के तौर पर देखता है जो सेना के दम पर सत्ता पर काबिज है, लेकिन समर्थकों की नजर में वो असमानता को दूर करने वाले नायक है। मुश्किल वक्त में मादुरो मदद के लिए सेना के अलावा चीन जैसे मित्र देशों से आस लगाए हैं।
पूरे लैटिन अमेरिका में जितना भी पैसा चीन ने लगाया है उसमें तकरीबन आधा पैसा चीन का वेनेजुएला में लगा हुआ है। वेनेजुएला को लोन दे रखे हैं उन्होंने, पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन चीन उनको अभी भी थोड़ा नरम हाथों से बर्ताव करता है, पैसे देने की मियाद बढ़ा दी जाती है।
मादुरो को ये उम्मीद भी है कि तेल की कीमतें बढ़ने से वेनेजुएला की तकदीर बदलेगी, लेकिन शनिवार के कथित हमले के बाद एक आशंकित राष्ट्रपति की तस्वीर देखने वाले विरोधी और आलोचकों का सवाल है कि क्या बदलाव मादुरो की उम्मीद के मुताबिक होगा।
दुनिया जहान में वेनेजुएला की बात कर रहे थे वात्सल्य राय। और विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के पार्थिव शरीर को अभी कुछ देर पहले राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई के मरीना बीच पर दफना दिया गया है। अमरीका द्वारा ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद तुर्की ने कहा है कि वो ईरान से प्राकृतिक गैस खरीदता रहेगा। तुर्की के ऊर्जा मंत्री फतेह दोनमेंच ने कहा कि अंकारा अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद गैस खरीदता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार से आग्रह किया है कि बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमानों को सुरक्षित वापस लाने के लिए वो रखाइन प्रांत की स्थिति सुधारे। इंडोनेशिया अधिकारियों ने बताया है कि रविवार को आए भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या कम से कम 150 हो गई है और जीवित लोगों की खोजबीन जारी है। सऊदी अरब ने कनाडा में अपने सभी चिकित्सा उपचार कार्यक्रमों को रोक दिया है और वहां के अस्पतालों से सऊदी मरीजों को निकालने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।